તારીખ 17-8-1994 શ્રી સમયસાર ગાથા 207 અને 208 તથા કળશ 144 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 199
આગામી ગાથા વિસૂચના કા કામ કહેતે હૈ નાન સ્વયં કા અનુભવ કરે તો કિતના મહિમાવંત મહત્વપૂર્ણ ઘટના હૈ વો કહેતે હૈ અચિંત શક્તિ સ્વયમેવ દેવ ચિન માત્ર ચિંતામણિ રેછ યસ્માત સર્વાર્થ સિદ્ધાત્મ તયા વિધત્તે જ્ઞાને કે મન્ય છે પરિગ્રહેણ શ્લોકાર્થ ક્યોંકે યો જ્ઞાની અચિંત્ય શક્તિ વાળા દેવ હૈ સમનભદ્ર આચાર્ય દેવ ને રત્નકરંડ શ્રાવક આચાર્ય ને અમૃતચંદ્ર આચાર્ય કહે वो अचिंत शक्ति वाला ये है। क्या ऐसा कहा कि दिव्य शक्ति को प्रकट किया भीतर में जो आत्मा में दिव्य शक्ति है उनको प्रकट किया है इसलिए ज्ञानी अचिंत्य शक्ति वाला देव है और चिन्मात्र चिंतामणि है और चैतन्य चिंतामणि है चैतन्य मात्र ऐसा चिंतामणि है जड़ चिंतामणि नहीं है चैतन्य चिंतामणि है जड़ चिंतामणि सिद्ध पद को प्रकट नहीं कर सकता जड़ चिंतामणि सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं कर सकता वो भौगोलिक पदार्थ की चिंतना को फल देता है ये चैतन्य चिंतामणि है वो सम्यक दर्शन से लेकर के सिद्ध पद का चमत्कार करता है इसलिए चैतन्य चिंतामणि क्या है हाँ वो तो जड़ चिंतामणि का संयोग तो कुछ काल तक होता है और चैतन्य चिंतामणि सादी अनंत काल अनादि अनंत तो है ही प्रकट किया वो सादी अनंत काल में योग ज्ञानी स्वयं ही अचिंत्य शक्ति वाला देव है कैसा शक्ति वाला देव है अचिंत्य चिंतन में नहीं आ सके जिसकी अनुमान लगावे उसका विचार करे चिंतन करे तो उसमें उसका समावेश नहीं होता उतना महिमावंत है अचिंत्य शक्ति जिसकी है ज्ञानी की शक्ति कितने लिया अचिंत्य शक्ति लिया है हाँ यानी पूजनीय है अचिंत्य शक्ति वाला देव है और पूजनीय नहीं है वो बात को मेल खाता नहीं है इसलिए जिसके सर्व अर्थ सिद्ध है सर्व प्रयोजन सिद्ध है ज्ञानी हुआ तो उसका सर्व प्रयोजन सिद्ध हो गया अभी उसको कुछ प्राप्ति करने का इच्छा नहीं है ज्ञानी उसे तो मोक्ष की भी परवाह नहीं करता ज्ञानी मोक्ष की भी परवाह नहीं करता मोक्ष की पर्याय मेरे पास आने हो तो आओ नहीं आने हो तो मत आओ मेरे उससे प्रयोजन नहीं है ऐसा अपना गुण निधान स्वयं का पता लग गया या अभी कोई पर्याय की भी चिंता हमको नहीं है एक स्वरूप निश्चय होते ही सभी पर्याय गौण हो जाती है वहां से गौण होती है इसके पहले तो गौण नहीं होती है स्वरूप निश्चय में स्वरूप की महिमा उतनी आती है एक समय की पर्याय की महिमा चली जाती है ऐसे तो संसारी जीव को जगत के पदार्थ की महिमा है, वहां से उसको उठाने के लिए बोलने में आता कि तेरे परिणाम में बहुत ताकत है। बाह्य पुण्य का फल है, जो बाह्य पदार्थ है वो तो पुण्य का फल है, लेकिन पुण्य भाव एक सेकंड में भूमि ग्रेविक में जाए ऐसा पुण्य भाव कर सकता है। तेरे भाव को तो देख, तू बाह्य पदार्थ को देखता है तो तेरे परिणाम को तो देख। चले उसको अंदर ले आते हैं, बाह्य दृष्टि छुड़ाने के लिए अंदर ले आते हैं परिणाम तक। परिणाम को देखने वाले को फिर ऐसा कहता है कि परिणाम सभी गौण करने लायक है, मुख्य करने लायक नहीं है। यहां से भी उठा लेते हैं, पहले परिणाम तक ले आए, इसका मतलब यह नहीं कि परिणाम की मुख्यता करना है। परिणाम की तो गौणता करनी ही है, वो बात पे शुरू से ही लक्ष्य में रखनी है। हाँ, वो भी करता है। उसको सत्पुरुष मिला तो अपना आत्मा मिल गया, सत्पुरुष मिला तो आत्मा मिल गया। आत्मस्वरूप में और सत्पुरुष में वो भेद नहीं देखता है, इसलिए जिसके सर्व अर्थ सिद्ध है, सर्व प्रयोजन सिद्ध हो गया है, ऐसा स्वरूप होने से, ज्ञानी का ऐसा स्वरूप होने से ज्ञानी दूसरे के परिग्रह से क्या करेगा, ज्ञानी दूसरे परिग्रह से क्या करेगा, उनके लिए कोई काम की चीज नहीं रहे। मेरा स्वरूप सर्वगुण संपन्न है तो फिर मेरे दूसरे की जरूरत नहीं है। जिसके घर में हीरे के गोडाउन भरे हो, तिजोरी नहीं, गोडाउन भरे हो, वो तो सोना का भी संग्रह नहीं करता तो लोहा का कहां से करेगा। उतना परिश्रम उसको उठाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जिसके सर्व प्रयोजन सिद्ध है ऐसा स्वरूप होने से ज्ञानी दूसरे के परिग्रह से क्या करेगा। दूसरा परिग्रह अन्यस्य, दूसरे के परिग्रह से क्या करेगा, तो उसको कोई दूसरे का परिग्रह की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने का नहीं है उसको। संसार उसको चलाना नहीं है, ज्ञानी को संसार चलाना नहीं है, किंतु ज्ञानी को संसार जलाना है। चलाना नहीं है किंतु जलाना है। ध्रुव भाई, जिसको संसार चलाना है उसको दुखी होना है, दुख को तो खत्म करना है, इसलिए ज्ञानी को संसार चलाना नहीं है। वो आ पड़ा है प्रारब्ध योग से, माथे आ पड़ा है। अगर वो भी उनको करना हो तो उसको छोड़ते क्यों, भरत चक्रवर्ती ने क्यों छोड़ा, छह खंड मिल गया तो बस मौज मजा करते रहे। जिस चक्रवर्ती ने छह खंड मिलने पर मौज मजा किया वो सातवें नारक के पार्लियामेंट में गया, रमदत्त चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती गए। हाँ, चक्र से नरक से मिथ्या दृष्टि होवे तो, सम्यक दृष्टि होवे तो सिद्ध पद में जाएगा, छोड़ देगा। भरत महाराज उसी भूमि में चले गए, सीतालय में चले गए। हाँ, एक घड़ी में केवल ज्ञान लिया, छखंड लिया के केवल ज्ञान लिया, खंड को लिया, छह खंड को नहीं लिया। सुगानी जी ने लिखा कि नहीं लिखा, लोग ऐसा देखते हैं कि चक्रवर्ती छह खंड साधते हैं बार में, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में वो अखंड को साधते हैं, छह खंड को साधते नहीं है। मातो उल्टी दृष्टि की बात है, भावार्थ। यो ज्ञान मूर्ति आत्मा स्वयं ही अनंत शक्ति का धारक देव है, ज्ञान मूर्ति आत्मा स्वयं ही अनंत शक्ति का धारक देव है। अनंत शक्ति का धारक मनुष्य है, तिर्यंच है, ऐसा चार गति का कोई बात नहीं लिया, और ये देव गति वाला देव नहीं है। हाँ, इससे भी देवाधिदेव है, देव उनको नमन करते हैं, देव है उसको नमन करते हैं, देव है। और स्वयं ही चैतन्य रूपी चिंतामणि होने से खुद ही चैतन्य चिंतामणि है, वांछित कार्य की सिद्धि करने वाला है, और उसको जगत का पदार्थ की वांछा तो होती है। निकांक्षित अंग प्रकट किया ने, निशंकित निकांक्षित, तो जगत के पदार्थ की आकांक्षा उसको नहीं होती, चाहे वो निर्धन हो चाहे चक्रवर्ती हो, कोई आकांक्षा नहीं है। ऐसा महामहिमावंत स्वयं का स्वरूप का पता लग गया तो किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं होती, सर्वगुण संपन्न है स्वयं, कोई कमी नहीं है, अंदर में सब कुछ भरा है, वचनामृत में आता है, कोई खामी नहीं है, पूरा अंदर जो चाहिए वो सब अंदर भरा है, कुछ चीज बाहर लेने की जरूरत उसको नहीं है, और बाहर की चीज मिलती भी नहीं है। स्वयं ही चैतन्य रूपी चिंतामणि होने से वांछित कार्य की सिद्धि करने वाला है, वांछित कार्य वो पहले से वांछा किया था, तो पूर्ण होना है तो उसकी सिद्धि करने वाला है। पदार्थ ही पूर्ण है तो अवस्था पूर्ण हो ही जाएगी, अधूरी रहेगी नहीं। इसलिए ज्ञानी के सर्व प्रयोजन सिद्ध होने से उसे अन्य परिग्रह का सेवन करने से क्या साध्य है? ज्ञानी के सर्व प्रयोजन सिद्ध हो गया है, फिर कोई प्रयोजन बाकी नहीं रहा, तो परिग्रह तो प्रयोजन के कारण, सुख का प्रयोजन के कारण से जगत में परिग्रह इकट्ठा करते हैं, परिग्रह ज्ञानी ने अपना स्वरूप जो है उसकी दृष्टि है, दुरास की दृष्टि नहीं है, दृष्टि दुरास पर नहीं है, पूर्ण उसके पर दृष्टि है, और प्रतीति हो गई कि पूर्ण होगा होगा और होगा, अधूरा रहने वाला नहीं हो, कुछ काल तक अधूरा रहे तो इसकी गिनती नहीं करते। क्यों कि नहीं करते कि कोई दरिद्री को अपने मकान में से निदान मिला, क्या अपना पुराना मकान में से निदान मिल गया, तो उनके पास तो पहले कुछ नहीं था, मकान रिपेयर करने का, कपड़ा बनाने का, जेवर बनाने का कुछ भी उनके पास नहीं था, वो उतना निदान मिल गया कि कितना भी खर्च करे खुटे नहीं। अब कोई ऐसा प्रश्न करता है क्या कि मकान तो अभी बना नहीं, कपड़े तो नहीं पहने नहीं, सिलाए नहीं, और दागिना जेवर तो बनाए नहीं, कैसा हो जाएगा? क्या टाइम क्यों लगता है? गढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, सिलाने में टाइम नहीं लगेगा, मकान बनने में समय नहीं लगेगा, लगेगा तो लगेगा, उसकी कोई चिंता, जिसको निदान मिल गया उसको उसकी कोई चिंता होती नहीं है। वो अन्याय करने की बात है। क्या जब वो अपने को अपूर्ण नहीं देखता है तो फिर हमको उसकी अपूर्णता को तो अनुभव क्या करता है? स्वरूप का, पूर्ण स्वरूप का अनुभव करता है या अपूर्ण दशा का अनुभव करता है? अपूर्ण दशा है वो तो एक जानने की चीज है, मूल स्थान तो एक जानने की बात है, दशा तो एक जानने का विषय है, वो बात मुख्य है नहीं। और वो दृष्टांत ले लो ना कि जिसको निदान मिला उसको मकान अभी क्यों जल्दी नहीं बनता है, ऐसी बात होती है क्या? हाँ बराबर, प्रभाव अवस्था पूर्ण हो रही है, जो हो रही है उसमें जल्दबाजी क्या, जो हो ही रही है उसमें जल्दबाजी क्या। वो मकान अच्छा से अच्छा बनाएगा तो मकान बनाने वाले को कारीगर को ऐसा बोलेगा कि एक दिन दो दिन लेट हुए, पांच पंद्रह दिन लेट हुए, लेकिन काम अच्छा से बढ़िया होना चाहिए। इसको जल्दबाजी है, भले ही पंद्रह दिन मिले, काम अच्छा होना चाहिए। है क्या नहीं, कैसे करते हैं? देवत्व प्रकट हुआ है, जीनत्व प्रकट हुआ है, वो जीनदेव है, जीनत्व प्रकट किया है। कोडरमजी ने वो लिया सम्यक ज्ञान चंद्रिका में टीका है ना, गोमुत्सार की टीका में वो बात लिया है, वो जीनत्व प्रकट किया है। क्यों इसका अनुमान करते हैं कि जीनत्व प्रकट किया है? इसलिए हाँ, एक नातिका हो गया। और सम्यक दर्शन, गुरुदेव तो ऐसा कहते थे कि सम्यक दर्शन के हिसाब से तो एक त्रिंज सम्यक दर्शन का सम्यक दर्शन और सिद्ध भगवान का सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के हिसाब से दोनों बराबर है। जा ना तो अवगाढ़ परम अवगाढ़ क्षायिक उपशम कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं गिना, एक त्रिंज और सिद्ध भगवान सरीखे हैं सम्यक दर्शन के हिसाब से। जाओ, इतनी महिमा है ज्ञानानुभव की, इतनी महिमा है। तो जिसकी महिमा करने का पद है, एक श्लोक है, जिसकी महिमा करने की बात चलती है, वहां इसकी दशा अधूरी है। वो बात बीच में हम क्यों लाए हैं? अभी तो इसका गुणगान करने की बात है, तो इसका अवगुण को हम देखेंगे क्या है? जिसका गुणगान चलता हो वहां उसका गुणगान ही गाना चाहिए। देखो, एक परिवार में पुराने कई लोग तो मर जाते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, कोई छोटी उम्र में, कोई बड़ी उम्र में, जिसके भी आयु पूर्ण होते हैं वो मर जाते हैं। जब घर में शादी विवाह का खुशी का प्रसंग आता है तो क्या इस वक्त को उसको याद करता है कि वो मर गया था, वो मर गया था, ऐसा देखते हैं क्या? तो नहीं मरा था क्या? फिर भी क्यों याद नहीं करते? कि अभी ये याद करने का प्रसंग नहीं है। ऐसे ज्ञानी को सर्वगुण संपन्न अपना परमात्मा मिला, उसकी दशा अधूरी नहीं, वो देखने की बात, अभी याद करने की बात नहीं है। जब आचार्य महाराज खुद गुण प्रशंसा करते हैं तो वो तो देव है, हम कहें इसकी दशा तो अधूरी है। वो तो बात अभी स्मरण में भी लाने लायक नहीं है। हाँ, वो वास्तविक शुरुआत किया, आगे बढ़े और अपना परमात्मा को प्रत्यक्ष किया, प्रत्यक्ष प्रकट किया, बहुत बड़ा काम किया, सारा संसार, सारे संसार के संतति को काट दिया। अभी उनका संसार रहा, संसार को जला दिया, तो फिर उसकी हाँ, श्रद्धा अपेक्षा है केवल ज्ञान हुआ है, मुख्य नहीं का हेतु से केवल ज्ञान वर्तता है, इच्छा दशा है केवल ज्ञान वर्तता है, वर्तता है, वर्तता है, ऐसा लेते हैं। अधूरी दशा ऐसा नहीं लिया, केवल ज्ञान वर्तता है, ऐसा लेते हैं, ऐसी बात है। कैसे करेगा? निश्चय तो बराबर का नमूना वहां से होता है, इसके पहले निश्चय नहीं होता है कि पूरी चीज कैसी है। आप तो देवलाली में ही पत्र आए हो, तो श्रद्धा अपेक्षा है केवल ज्ञान वर्तते से अर्थ करो तो बता, हमारा हमें तो आवु तो हमें नहीं कि आवो अर्थ है, हमें कहें ये लोगों ने नवी ज्ञान ने सिद्धांत ज्ञान नो कोई ख्याल नहीं, अध्यात्म नो एटलो ख्याल नहीं, सिद्धांत नए अध्यात्म बधु एक साथ आवे एटले लागे घणो આવું સાંભળ્યું નથી કે આ પ્રશ્ન
સ્પષ્ટીકરણ પણ આવી ગયું છે. ગુરુદેવ ભગવાન ભગવાન કહે, મિથ્યા દ્રષ્ટિ કો ભી ઔર હમ સમ્યક દ્રષ્ટિ કો કહે કે દશા તો અધૂરી હૈ, દેખને કી દ્રષ્ટિ અલગ હૈ. યે જો જ્ઞાની કો દેખને કી દ્રષ્ટિ, વો ભગવાન કો દેખને કી દ્રષ્ટિ હૈ. ભગવાન ભી એસી દ્રષ્ટિ સે દેખતે હૈ, જિસ દ્રષ્ટિ સે ભગવાન દેખતે હૈ ઉસ દ્રષ્ટિ સે જ્ઞાની દેખતે હૈ, જિસ દ્રષ્ટિ સે જ્ઞાની દેખતે હૈ ઉસ દ્રષ્ટિ સે ભગવાન દેખતે હૈ. હમે ભી વહી દ્રષ્ટિ ગ્રહણ કરની હૈ, દૂસરી દ્રષ્ટિ સે હમે દેખના નહી હૈ. ઇસલિયે આનંદન જી ને ગાયા કે પ્રભુ તુમ જાણગ રીતિ સબ સૌ જગ દેખતા હો લાલ, આપકી જાણને કી રીતિ અલગ હૈ, આપ તો શુદ્ધ સત્તા સે સબ સબકો દેખતા હો લાલ. આપકી જાણને કી રીતિ તો સબકો ભગવાન દેખને કી હૈ, શુદ્ધ સત્તા વાલે. અધુરા ફધુરા દેખને કી આપકી દ્રષ્ટિ હૈ નહીં, મિથ્યા દ્રષ્ટિ આપકો દેખને કી દ્રષ્ટિ નહીં હૈ, આપ તો ભગવાન હી દેખતે હૈ. તો મેં સુન લિયા, હમ તો સબને સિદ્ધ સ્વરૂપ હી દેખતે હૈ. કોઈ કૈસા ભી હો, અપને કો કુછ ભી માનતા હો કે હમ તો ઇસકે વેરી હૈ, લેકિન હમ તો સબકો ભગવાન હી દેખતે હૈ, સિદ્ધ સ્વરૂપ હી દેખતે હૈ. ઠીક, ફૂલો કાઢ દો. આનંદગંજી શ્વેતાંબર ના સાધુ તો આપણે કોણ છીએ ભાઈ, કયો ધીરુભાઈ, હે કેવા મુમુક્ષુ છીએ આપણે, હે કાંજી સ્વામી ના મુમુક્ષુ છીએ ને, હે આપણે કાંજી સ્વામી વાળા કહેવાય. કેવા વાળા? એક વાળો નીકળ્યો, ભૂલજાના હે સંપ્રદાય બુદ્ધિ છે દેખના નહીં. આનંદગંજી શ્વેતાંબર કે સાધુ થે તો ગુરુદેવ ઇસકો પદ હમકો ક્યો સુનાતે થે? ગુરુદેવ ઇસકે પદ અપને કો ક્યો સુનાતે થે? પ્રવચન મેં ઉસકે પદ ક્યો લેતે થે? वो बात हमको थोड़ी दिमाग में आनी चाहिए कि कोई बात दूसरी होगी, उसमें भी कोई दूसरी बात होगी, ऐसी बात है. अनंत ज्ञानियों ने एक बात आवे, अनंत ज्ञानियों ने एक बात आवे. गुरुदेव को सम्यक दर्शन कब हुआ? 78 के साल में हुआ ना. और मैं श्वेतांबर संप्रदाय छोड़ करके दिगंबर राम नाई को ग्रहण करता हूँ, वो बात कब हुआ? कितने साल हुआ? 13 साल. श्वेतांबर रहे के दिगंबर रहे? श्वेतांबर साधु नहीं थे, वो सानकवासी के साधु नहीं थे कि नहीं? सम्यक दर्शन हुआ तो वहां से पलट गई दृष्टि के मैं स्थानकवासी का साधु नहीं हूँ. फिर बाहर से लोग क्या कहेंगे? स्थानक वासी के साधु है, मनुपुटी लगा के फिरते हैं और गोचरी करने को निकलते हैं, हमने बराबर देखा है कि तुमने जो देखा है वैसे वो है नहीं, क्या कहेंगे? ऐसे देखने का नहीं है, पहचान करने का है. पर्याय पलट के नया जन्म हो गया, जिसको आत्मज्ञान हुआ उसका नया जन्म हो गया, तो भाव पूरा बदल गया, भाव छूट गया. अभी इसलिए ज्ञानी के सर्व प्रयोजन सिद्ध होने से उसे अन्य परिग्रह का सेवन करने से क्या साध्य है? कि कुछ साध्य अर्थात कुछ भी साध्य नहीं है. तुमको दूसरी कोई पदार्थ से काम नहीं है. सारे जगत, सारा जगत ज्ञानी के लिए निकम्मा है. क्या है? निकम्मा है. उसका कोई काम की चीज नहीं है, कोई सुख का कारण नहीं, कोई दुख का कारण नहीं है. ऐसा निश्चय नहीं का उपदेश है ये निश्चय नहीं से ज्ञानी का स्वरूप बताया, निश्चय मैंने वास्तविक देखने का दृष्टिकोण उसको निश्चय नहीं कहने में, निश्चय नहीं का अर्थ क्या कि वास्तविक निश्चय मैंने वास्तविक खरा रूप से देखने का दृष्टिकोण को निश्चय नहीं कहने में आता है, ऐसा उपदेश दिया है आचार्य महाराज ने। खरा स्वरूप दिखाया ज्ञानी का, निर्जराधिकार में खरा स्वरूप दिखाया कि ज्ञानी तो स्वयमेव देव है, अचंत शक्ति धारक स्वयमेव देव है, उसको तुम दूसरी दृष्टि से देखना मत। अरिहंत को नमन करना, देवगुरु शास्त्र को नमन करना, समीर दृष्टि को नमन नहीं करना, वो बात यहाँ रहती नहीं है, ऐसी बात है। अब प्रश्न करता है कि ज्ञानी पर को क्यों ग्रहण नहीं करता, ज्ञानी को अन्य परिग्रह से कुछ लेना देना नहीं है तो क्यों नहीं ग्रहण करता है, इसका उत्तर गाथा में कहेंगे, मूल गाथा में कहेंगे। गाथा 207 जो नाम मन्निज भो परदवम मम इमम हवदी दवम अपाणम अपनो परिगहम तो नियतम व्याणंतो। अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ कौन सा ज्ञानी यह कहेगा कि परद्रव्य मेरा द्रव्य है, जब परद्रव्य में अपनापन ही छूट गया फिर कौन कहेगा कि ये मेरा द्रव्य है, वो कहेगा नहीं। जैसे एक बच्चा है उसको धाव माता उसका लालन पालन करती है, बड़ा होने से उसको पता चला कि ये मेरी माँ नहीं है, फिर वो उसको माँ कैसे कहेगा, तो ज्ञान हो गया कि ये मेरी माँ नहीं है। ऐसे जो जो परद्रव्य में अपनत्व किया था, ये मेरा मकान, मेरे पैसे, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी आबरू, मेरी इज्जत, मेरे कपड़े, पता चल गया कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा आत्मा सिवाय मेरा कुछ है ही नहीं, ये मेरा मेरा करना वो दुखी होना करने का कारण है, दूसरा कुछ कारण है इसमें है नहीं, तो फिर ज्ञानी तो उसको उसमें अपनापन उसको होएगा नहीं। जिसने पराया को पराया जाना उसमें अपनापन करना चाहे तो भी हो सकता नहीं है, क्यों नहीं होता कि करना चाहे तो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने परायापन देख लिया, अपनापन जहां है अपनापन देख लिया। जो जिसका स्वभाव है पदार्थ का स्वभाव, यही पदार्थ की संपत्ति है, इसको का अर्थ किया है नीचे, धन मिलकत अपने स्वामित्व की चीज उसको स्व कहने में आया है। जो जिसका स्वभाव है वही उसका सर्वस्व है, वही उसकी मिलकत है, वही उसका धन है, और वह उसका स्वभाव का स्वामी है, और वो पदार्थ खुद ही अपना स्वरूप का स्वभाव का स्वामी है। तो भेद किया स्व स्वामी संबंध वाला, वास्तव में भेद नहीं है, समझाने के लिए भेद किया, वास्तव में तो भेद नहीं है। विपत्ति चाहिए तो फिर विपत्ति में दुखी हो क्या करेंगे, इसका तो कोई इलाज नहीं है। जिसको विपत्ति में दुख लगा और स्वरूप संपत्ति के लिए ढूंढने निकला उसको दिखाते हैं, उसको बताते हैं, ताकि तो अनंत काल वही किया है, अनंत काल क्या किया है, वही तो क्या है, हाँ विपत्ति आपत्ति है, और आपत्ति को संपत्ति माने तो कितना दुखी हुए, बस यही हालत है जगत की। जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है और उसका स्वामी है, स्व है और वह उसका स्वामी भी है। इस प्रकार सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि के अवलंबन से तत्व दृष्टि का दो विशेषण लगाया, सूक्ष्म और तीक्ष्ण तत्व दृष्टि के अवलंबन से ज्ञानी अपने आत्मा को ही नियम से आत्मा का परिग्रह जानता है। ज्ञानी किस तरह से अपने आत्मा को परिग्रह जानता है कि अंदर में सूक्ष्माते सूक्ष्म स्वभाव है, तीक्ष्ण दृष्टि मैंने सबको हटा करके संयोग को दृष्टि में से हटाया, देह को सर्व दृष्टि में से हटाया और राग को भी हटाया और एक समय की पर्याय को भी हटाया, क्योंकि स्वभाव तो सूक्ष्माते सूक्ष्म है, पर्यायत्व को भी हटा दिया, जो पर्याय दृष्टि थी उसको भी छोड़ दिया। ऐसी सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि के अवलंबन से ज्ञानी आत्मा को ही नियम से आत्मा का परिग्रह जानता है। इस तरह से ज्ञानी तो अपना स्वरूप को ही अपना परिग्रह, मैंने सर्वस्व परिग्रह का अर्थ वही है, परि मैंने चारों बाजू से, सर्व बाजू से, चारों मैंने सर्व बाजू से पूरे पूरा ग्रहण कर लेना, उसको परिग्रह कहने में आया है। तो अज्ञानी का परिग्रह क्या है? मूर्छा परिग्रह। क्या सूत्र क्या लिया है? मूर्छा परिग्रह, ऐसा सूत्र लिया है तत्वार सूत्र में। परिग्रह की परिभाषा क्या हुआ? कि अपना स्वरूप में वो स्वरूप में मूर्छित हो गया और वर्तमान में ऐसा पैसे वाला हूँ, मकान वाला हूँ, परिवार वाला हूँ, उसमें मूर्छित मूर्छित हो गया है। तो इसकी मूर्छा है, इसका परिग्रह है, मूर्छा खा गया है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, वह पूरी मूर्छा खा गया है, पूरा स्वरूप छूट गया उसको, इतना पकड़ किया था। तो जितना पकड़ उसको उसने परद्रव्य को अपने करुण अपना पने में किया है, वो पकड़ छोड़ के उससे ज्यादा पकड़ उसने अपना स्वरूप को कर दिया, क्योंकि वो पकड़ किया था वो छूटने वाली थी, अब ये पकड़ छूटने वाली नहीं है, इसी मजबूत पकड़ है। संसार की पकड़ से भी, मिथ्यात्व की पकड़ से भी, मिथ्यात्व की पकड़ परद्रव्य पर होती है, सम्यक्त्व की पकड़ बहुत मजबूत होती है जो स्वरूप पर होती है, क्योंकि अपना स्वरूप है, अभेद स्वरूप है, इसलिए उसमें तो वो मार खाता था, परद्रव्य को पकड़ने को जाता था, परद्रव्य हाथ में नहीं आता था, खाली खाली रहता था, खाया तो खाली रह गया, पिया तो खाली रह गया, क्या आया आत्मा में? कोई एक रचकण भी नहीं आया है। तो वो पकड़ तो कभी भी छूटने वाली थी, अभी स्वरूप की पकड़ अनंत काल छूटेगी नहीं। तो ये सबसे बड़ा परिग्रह है, परिग्रह मैंने अच्छी तरह ग्रहण करना। और किस तरह से ग्रहण किया? आत्मा को छोड़ करके जिसमें मूर्छा खाता है वो परिग्रह है, चाहे द्रव्य हो चाहे भाव हो, जिसमें मूर्छा खाया वो इसका परिग्रह है। उसने मूर्छा खाया है और क्या, सुबह में मूर्छा खाया तो वो इसका परिग्रह है। कोई क्या करता है कि बाह्य परिग्रह को तो छोड़ देता है, मकान छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, दीक्षा धारण कर लिया, जंगल में चला गया, राजपाट छोड़ करके, लेकिन शुभ भाव में पकड़ किया तो वो उसका परिग्रह हो गया। आत्मा को ग्रहण नहीं करता है सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से, कैसा लिया है? सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि के आलंबन से, तत्व दृष्टि जो उसमें तत्व है, सत्व है आत्मा में, उसका अवलंबन लिया है। ऐसे सूक्ष्म और तीक्ष्ण दृष्टि से लिया है, उसको अपना आत्मा, ये आत्मा को नियम से वास्तव में परिग्रह जानता है कि ये मेरा सर्वस्व है, वही मूर्छा वाला है। मिथ्या दृष्टि सभी मूर्छा वाला मूर्छित है, अपना स्वरूप को जो जो भी भूले हुए हैं तो सब मूर्छित है। द्रव्यलिंगी मूर्छा वाला है, हम नहीं है, ऐसी बात थोड़ी है। द्रव्यलिंगी मूर्छा वाला, वो मूर्छा वाला, वो मूर्छा जो स्वरूप को भूला वो मूर्छा खाया है, मूर्छित हो गया है, ऐसी बात है। वो तो जगाने की चीज है, ये कहकर के मूर्छा को टालने की बात है। अपने गुजराती में समझे मूर्छा बढ़ी गई है, मैंने मूर्छा बढ़ी गई, पाछी बढ़ी गई, जागृत थी गयो। ऐसे ज्ञानी को तो अपना आत्मा का ही परिग्रह जानता है, इसलिए यह मेरा स्व नहीं है और मैं इसका स्वामी नहीं हूं। कोई परिग्रह, कोई बाह्य पदार्थ मेरा स्व नहीं है और मैं इसका स्वामी नहीं हूं, अपना तो छूट जाता है। हाँ, तीव्र रस से मूर्छा होता है। वैसे तो उसका श्रद्धा में भूल, ज्ञान में भूल, चारित्र में भूल, सब भूल है। मूर्छित कब होता है? तीव्रता आवे तभी तो मूर्छित होता है। मूर्छा खुद ही अवस्था की तीव्रता को सूचित करता है। जैसे किसी आदमी को छुरा मारा, बहुत दर्द होगा उसको, फिर दूसरा मारा, इससे ज्यादा, फिर और मारते गए, क्या हो गया? मूर्छित हो जाएगा, वो प्राण नहीं छूटेगा तो भी मूर्छित तो हो जाएगा। तो तीव्र वेदना हुई तब, कितनी असह्य तीव्र वेदना होने से मूर्छित हो जाता है। इतना दुख उसको वहां हुआ कि वो अपने शरीर की शुद्ध शान को भी भूलता है। अब कहते हैं कि मिथ्यात्व अवस्था में जीव इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है कि अपने स्वरूप सुख को भूलता है, इतना मूर्छित होकर के दुख को अनुभव करता है। भगवान कहते हैं कि एक समय की मिथ्यात्व अवस्था में दुख की तारतम्यता कितनी, अनंत दुख है। कितना दुख है? अनंत दुख है। चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, कोई भी हो, सेठ श्रीमंत हो या देवलोक का देव भी हो, मिथ्यात्व अवस्था में अनंत दुख है। वो अनंत दुख से मूर्छित हुआ है। कितना? अनंत दुख से मूर्छित हुआ है। ताकत, दुख सहन करने की ताकत भी बहुत है, इसके अनंत शक्ति को वहां प्रकट करता है कि देखो इतना दुख होने पर भी उसके मूल चीज में कुछ होता है नहीं है।
दुख है कि दुख वर्तमान
में प्रकट है, दुख मिथ्यात्व अवस्था प्रकट है, मूर्छित अवस्था प्रकट है, तो दुख भी प्रकट है, आकुलता प्रकट है। लेकिन सहन करने की शक्ति बहुत है, आदत बन जाती है, दुख की भी आदत बन जाती है, उतना ताकत वाला है तो दुख की भी आदत बन जाती है, उसको कोई तकलीफ नहीं, बस जीता है, खाता है, पीता है, सोता है, हंसता है भी, हंसता भी है। तो गुरुदेव कहते हैं कि वो सन्निपात में हंसता है। किसमें हंसता है? सन्निपात में हंसता है। सन्निपात का दृष्टांत देते थे, हंसता है तो सन्निपात वाला भी हंसता है, लेकिन वो बेचारा करुणा का पात्र है। वैसे मिथ्यात्व अवस्था में जो भी अज्ञानी दुखी है वो ज्ञानी के करुणा के पात्र है, और कुछ नहीं है।
हाँ,
मैं दुखी हूँ पता नहीं है, पता हुए तो दुख टालने का उपाय किए बिना है नहीं, उनको पता नहीं है। वो तो थोड़ा मिल गया तो मैं सुखी हूँ, 5-25-50 लाख मिल गया तो मैं सुखी हूँ, परिवार बढ़ गया तो मैं सुखी हूँ। 15 साल की उम्र में लिखा कृपाणु देव, लक्ष्मी अने अधिकार वजता सो विदुते तो कहो, દ્વાપણો સંસારનો નરદેને હારી જવો, જુગાર માં હારી ગયો, જુગાર ખેલ્યો. इसलिए यह मेरा स्व नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ. ऐसा सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि के आलंबन से जानता हुआ ज्ञानी, एम लेना, ऐसा लेना. ऐसा सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि के आलंबन से जानता हुआ ज्ञानी परद्रव्य का परिग्रह नहीं करता, यानी परद्रव्य को अपना परिग्रह रूप में करता नहीं है. जो है वो अपने में है, मेरे कारण से नहीं है. जो है सो भी मेरे कारण से नहीं है, अपने कारण से रहेगा, अपने कारण से जाएगा. जिसको वर्तमान पर्याय का भो नहीं है, ज्ञानी को तो क्या है, पता चल गया कि अभी जो है हमारे इस मनुष्य पर्याय पूरे होने का अवसर दिखता है. ठीक है, वर्तमान पर्याय का भी इसको मोह नहीं है, तो फिर परिग्रह का मोह होने का सवाल नहीं रहता. गुरुदेव का तो प्रत्यक्ष अनुभव है हम लोगों को. पिछले 2-3 साल बहुत स्वास्थ्य कमजोर रहा, क्या बोलते थे, इधर तो जाने का है क्या, ऊपर देवलोक का वो हाथ बताते, इधर तो जाने का है क्या, यहाँ से जाने का कोई रंज नहीं है, इधर तो जाने का है, कभी भी इधर चले जाएंगे, इसमें क्या है. कुछ नहीं, ब्लड कैंसर हुआ तो कुछ नहीं हुआ, हमको तो कुछ नहीं लगता है, तुमको लगता हो तो लगता हो, हमको तो कुछ लगता नहीं, कुछ दिखता नहीं है. और शरीर के स्वास्थ्य का मालूम पड़ गया है कि अभी परिस्थिति कमजोर होने जा रही है दिन प्रतिदिन, तो ठीक है, उधर तो जाने का है, तो यहाँ का कोई मोह नहीं है. ये सोनगढ़ बसाया, उतना ही ये हुआ वो हुआ, कुछ लेना देना ये सब इकट्ठे होते हैं, कुछ नहीं, जाओ इधर जाने का है. गाड़ी नहीं थी फिर वारसदार का सवाल पैदा नहीं होता. गुरुदेव के मेरी गाड़ी है ही नहीं, मेरी गाड़ी नहीं, फिर वारसदार का क्या सवाल है. और जिसको संग करना है तो वहां जाएंगे पीछे पीछे. क्या, जिसको गुरुदेव का संग करना है तो वो मानते थे कि जिसको संग करना होगा आएंगे, चले आएंगे, नहीं करना होगा तो हमको कोई लेना देना है नहीं. बहुत से ज्ञानी है वहां आगे गए हुए, बहुत से ज्ञानी वहां है, यहाँ बड़ा सत्संग भी होता है वहां, और वहां तो सब लब्धियां हैं, तो जाते हैं भगवान के समोह शरण में, महाविदेह में जाते हैं, कभी किस भगवान के समोह शरण में, कभी किस भगवान के विश्व भगवान है, विश्व तीर्थंकर है, तो देवाधिदेव तीन लोग के नाथ का सत्संग मिलता है. यहाँ क्या था इसके बराबरी में, यहाँ तो कुछ है नहीं है भाई, तो यहाँ का मोह कैसे करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता. भावार्थ, यह लोक रीति है कि समझदार सयाना पुरुष दूसरे की वस्तु को अपनी नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता. डायो मानस होए, सज्जन मानस होए, ये बीजानी वस्तु ने पुतानी करतो नथी. सज्जन मानस होए, कोई भी चीज हो, भाई कोनी छे जरा खेरी होए ने ले लियो, कोई भी चीज हो, गमे इतनी कीमती हो, तो कितनी भी कीमती हो, यह तो लोक रीति है. लोक नहीं, सज्जनता नहीं रीति है विषय. लोक रीति मतलब सज्जनता की रीति उतनी है, कोई समझदार होता है, प्रमाणिक होता है, सयाना मैंने प्रमाणिक होता है, वो पुरुष दूसरे की वस्तु को अपनी नहीं जानता और ग्रहण भी नहीं करता. कोई मेरी चीज तो है नहीं, जिसकी हो उसकी ले जाओ, ये चीज मेरी नहीं है. इस प्रकार परमार्थ ज्ञानी, ज्ञानी को यहाँ क्या लिया, परमार्थ ज्ञानी मैंने वास्तविक ज्ञानी, कहलाने वाले नहीं, जो खरे ज्ञानी है, सच्चा ज्ञानी है, वो अपने स्वभाव को ही अपना धन जानता है, अपने स्वभाव को अपना धन जानेगा। मेरा जो अंदर में अनंत गुण की संपत्ति है वही मेरा सर्वस्व है और उसमें सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, कोई क्षति नहीं है। सिद्ध स्वरूप में क्या कमी है, सिद्ध पद में क्या कमी है, तो मेरे में भी नहीं है। नहीं है उसका भी अधिकारी
नहीं है।
इस प्रकार परमार्थ ज्ञानी अपने स्वभाव को ही अपना धन जानता है, पर के भाव को अपना नहीं जानता और उसे ग्रहण नहीं करता। पर के भाव मैंने कैसी भी पर्याय हो, पर द्रव्य की कैसी भी पर्याय हो, उसमें मेरा कुछ है नहीं, कुछ मेरा नहीं है। पूर्व प्रारब्ध से तो मेरा है ना, बैंक अकाउंट में मेरी सिग्नेचर चलती है क्या, क्योंकि ये मेरा खाता है, ऐसा है क्या?
नहीं है।
अपना कुछ है नहीं, जहाँ तक वो मेरा है वहां तक अपना अपना होगा नहीं। एक म्यान में दो तरवार समाती
नहीं है।
या तो तुम परद्रव्य को अपना करो या तो तुम स्वद्रव्य को अपना करो, जिसमें तुमको सुख उपजे वैसा करो। ठीक वो सच्चा प्रमाणिक परमार्थ तो अप्रमाणिकता है, पर द्रव्य को अपना जाना है तो अनादि से अप्रमाणिक है। वो प्रमाणिक के लिस्ट में नाम था ही नहीं, मान लिया था लेकिन था नहीं। ठीक बात है, बता अजैना है, कुटुंब परिवार वाला नोता तो કે બધા અજાણ્યા છે, મોક્ષો આટલા બધા સેવા કરે આ કરે તે કરે બહેનો સેવા કરતા હતા તો કે બધા અજાણ્યા છે, અહીંયા કોઈ છે નહીં અમાર। પર કે ભાવ કો અપના નહીં જાનતા ઉસે ગ્રહણ નહીં કરતા, ઇસ પ્રકાર જ્ઞાની પર કા ગ્રહણ ઓર પર કા સેવન નહીં કરતા, પર કા ગ્રહણ ભી નહીં કરતા ઓર પર કા સેવન ભી નહીં કરતા। सुख के कारण सेवन नहीं करता, ये मेरे सुख का कारण है इसलिए मुझे चाहिए, वो बात उनको
क्या सेवन करता है?
वो अपने स्वरूप का सेवन करता है, अपना सुख स्वभाव का सेवन करके सुख में रहते हैं, सुख में मौज करते हैं। इसलिए तो अचिंत्य चिंतामणि देव दिया, चैतन्य चिंतामणि देव लिया है, इसलिए दिया है कि उसको किसी के मांगने की जरूरत नहीं।
भगवान।